नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।